गोपी जाना वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जान वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Thank you. कृत हरे कृत 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय कृत बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे प्रभुपाद 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 जय श्री श्री कृष्ण बलराम जी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री श्री गौरनिताय की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय गौर प्रेम नंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायसु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके ग्रथरा श्रीमद भागवत से पठन स्कंद चार अध्याय तेरह और श्लोक संख्या 48 विज्ञाय निर्विध्य गतं प्रतिं प्रजा विज्ञाय निर्विध्य गतं पतिं प्रजा पुरोहिता मात्य सुहृदा गणादयः पुरोहिता मात्य सुहृदा गणादया विचक्युरुव्या मति शोक कातरा विचक्युरुव्या मति शोक कातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः निज्ञाय निर्विध्य गतं पतिं प्रजा पुरोहिता मात्य सुहृदा गणादयः विच्युक्युरुर्व्या मतिशोक कातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः। आप लोग दोहराएंगे, विज्ञाय निर्विध्य गतिं पति प्रजा माताएं
विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजा
शब्दार्थ विज्ञाय जानकर, निर्विध्य उदास, गतं चला गया, पतिम राजा, प्रजा समस्त नागरिक, पुरोहित पुरोहित, आमत्य मंत्री, सुहृत मित्र, गणादय तथा सामान्य जन, विचिक्यु खोजने लगे, उर्व्यां पृथ्वी पर, अतिशोक कातरा अत्यंत दुखी होकर, यथा जिस प्रकार, निगूढ़ छिपा हुआ पुरुषं परमात्मा को, कुयोगिनः अनुभवहीन योगी। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस प्रकार है। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। तात्पर्य यहां पर अनुभवहीन योगी द्वारा अपने भीतर परमात्मा की खोज करने का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। परम सत्य को तीन प्रकार से जाना जाता है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। ऐसे अनुभवहीन योगी को योगिनः कहते हैं, चिंतन द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं किंतु प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते। जब राजा ने घर छोड़ दिया तो वह निश्चिंत था कि वह अन्यत्र कहीं ठहरा होगा किंतु नागरिकों को पता न था कि उसकी खोज कैसे की जाए, इसलिए वे अनुभवहीन योगियों की तरह क्षुब्ध थे। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना सलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य दीपम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम् पंगुलंगयते गिरिम यत् कृपातम् हम वंदे परमानंद माधवम् श्री गुरु दीन तारणम् श्री चैतन्य ईश्वरम्। भूतैर्महद्भि इमाम् पुरा विभो निर्माय सेते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलंकृ शिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलंकृ शिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ये जो है अध्याय 13 का लास्ट श्लोक से पहला है, लेकिन लास्ट श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो उसको भी हम इसके साथ साथ में समाप्त कर देंगे। तो लास्ट श्लोक इस प्रकार है। अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापते हिरतोद्यम प्रत्युपसृष्टते पुरीं ऋषीन समेता अभिवध्य शास्त्रव निर्वेदयन पौरव भर्तु विप्लवम्। जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता न चला तो वे अत्यंत निराश हुए और नगर को लौट आए, जहां पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सभी ये जानते हैं, एक कथा चल रही है महाराज अंग का गृह त्याग, किस प्रकार जो है महाराज अंग अपने घर परिवार को विशेष करके अपने राजपाट को, जिस राजपाट को जो समस्त ऐश्वर्यों से भरपूर हो, जिस राजपाट में या जिस परिवार में उसके जो है सुंदर पत्नी हो, जो आज्ञाकारिणी हो और अन्य सारे उनके बहुत सारे सुहृद गण हो, ऐसे भरे पूरे राजपाट को त्याग करना ये कोई आसान काम नहीं होता है। वैसे तो देखा जाए तो संसार में राजपाट क्या, जहां भी हम हैं, जिस स्थिति में हैं, गृह तो त्याग करना ही चाहिए। प्रायः देखा जाता है संसार में कभी कभी तो लोग भगवत कृपा से अपनी इच्छा से घर त्याग करके चले जाते हैं, जैसे भरत महाराज ने अपनी इच्छा से उन्होंने घर का त्याग कर दिया था, कोई उनको कहना नहीं पड़ा कि भाई तुम घर छोड़ो, अभी बहुत हो गया राज। वो भगवान की स्मृति में इतना तन्मय हो गए थे कि राजपाट में उनकी कोई रुचि नहीं रही थी, इसलिए जवानी अवस्था में छोड़ करके चले गए थे। कभी कभी किसी को घर छोड़ने के लिए किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, उनके ऊपर समझाए कि भैया इससे पहले कालरूपी सर्प तुझे दंशन करे, अच्छा होगा तू पहले जाकर के जंगल में जाकर के उस घड़ी की तैयारी कर। तो कुछ महापुरुषों को समझाने से कहने से भी कुछ लोग पर घर छोड़े हैं, जैसे धृतराष्ट्र छोड़े थे, विदुर जी ने उनको समझाया, तू अभी भी जो है इस बात को नहीं समझा, तुमने जो है पांडु के पुत्रों को मानने के लिए क्या क्या नहीं किया, और अभी भी तुम जो है कुत्ते की तरह उनके टुकड़ों पर पल रहे हो, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? तुम नहीं जानते हो कि इंतजार समय किसी का इंतजार नहीं करता, काल किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए अच्छा होगा तुम अभी घर छोड़ करके जंगल में जाओ, अपना भजन करो, अपना कल्याण करो। तो विदुर जी के कहने से जो है धृतराष्ट्र ने भी गृह का त्याग किया था। और कभी कभी जो इन दोनों स्थितियों में नहीं है लेकिन फिर वो भगवान के भक्त हैं, भगवान में उनकी मति लगी हुई है या भगवान स्पेशल उनका कल्याण करना चाहते हैं, तो उनके परिवार में विषम परिस्थिति पैदा कर देते हैं। लोग तो सोचते हैं जी हमारी पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ नहीं है। आज्ञाकारी होती तो थोड़ी तो ये बोलता हमसे आकर के। तो ये विशेष भगवान की स्पेशल मर्सी समझना, इस बात को समझना, विशेष कृपा समझना। यदि घर में हमारे बच्चे अनुकूल न हो या पत्नी अनुकूल न हो, ये भी स्पेशल कृपा है। तो भगवान क्या करते हैं, जिनको अपनी स्पेशल कृपा देना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी देखो, उनकी पत्नी जो है प्रतिकूल हो गई थी उनकी, तो ऐसे ही भगवान जो है, वैदिक पद्धति तो यही है। वैदिक पद्धति क्या है, वैदिक पद्धति ये है कि जो चार आश्रम है उसमें से जो वानप्रस्थ आश्रम है, ये तीसरा जो आश्रम है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि तीसरे आश्रम में कम से कम घर का परित्याग करे, अर्थात 50 वर्ष की अवस्था से उसको घर छोड़ देना चाहिए। ये सभी का जो है ये नियम सभी के ऊपर लागू होता है। प्रहलाद महाराज ने भी इस बात को जो है कहा है, क्या बोले हैं, ततः साधु कुमार नहीं ततः साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा सम उदगिन धियाम असत ग्रहात हित्वा आत्मपातकं ग्रह अंधकूपं वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि हे मेरे पिताजी, ये किसको बोले हैं? असुर वर्य देही नाम, असुर वर्य जो असुरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कौन? हिरण्यकश्यपु अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, जो भी इस संसार के अंदर आया है और संसार में आकर के जिसने भी अपनी मति संसार में लगाई, सदा सम उदगिन धियाम असत ग्रहात। असत ग्रहात का मतलब होता है ये संसार जो है वास्तव में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सत्य है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहां कोई भी चीज सत्य नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कौन है? ततः साधु मन्ये, ओ ही वास्तव में बुद्धिमान है। क्या कौन बुद्धिमान है? इस संसार को ये जान लेता है कि ये संसार कैसा है, असत ग्रहात, ये संसार टेम्परेरी है, नाशवान है, इसको क्या करना चाहिए, हमें एक न एक दिन छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए जो इस बात को ठीक ठीक से समझा है वो तो जो है मनमानी छोड़ करके, अपनी इच्छा से छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन भगवान फिर क्या करते हैं, कभी कभी उन लोगों के ऊपर स्पेशल जो नहीं राजकाट में बहुत लिप्त होते जा रहे हैं, तो उनके घर में फिर ऐसी विपरीत परिस्थिति पैदा करते हैं जिससे वो क्या होता है, घर परिवार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे महाराज अंग को देखो, महाराज अंग भगवत भक्त है, जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के समय जब देवता लोग उनकी आहुतियों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो महाराज अंग ने प्रश्न किया कि मैंने ऐसा कौन सा पाप है जिसके का जो किया है जिसके कारण जो है देवता लोग मेरे यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं। तो पुरोहितों ने क्या कहा? पुरोहितों ने कहा, महाराज इस जन्म में तो आपका ऐसा कोई भी पाप नहीं दिखाई देता, शरीर से तो जाने दो, जो आपने मन से भी किसी का दूसरे का पाप किया, कल्पना कर सकते ना, मतलब कितने वो शुद्ध थे इस जीवन में, उन्होंने कितनी शुद्धता को, शरीर से तो चलो कोई नहीं भी कर सकता, ये तो मान लेते कि भाई शरीर से न किया हो, लेकिन मन से पाप न किया हो ये तो असंभव सी बात लगती है। लेकिन महाराज अंग के बारे में पुरोहित बोल रहे कि महाराज शरीर की तो जाने दो, मन से भी आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसके कारण देवता लोग ये आहुति में नहीं आ रहे हैं। तो महाराज अंग वास्तव में ही एक शुद्ध थे और फिर दूसरा उनके अंदर भगवत भक्त थे। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने इनको अपने पास में बुलाने के लिए क्या किए, एक तो जो है पहले इनकी पत्नी जो साक्षात मृत्यु की ही पुत्री है उससे जो है उनका संपर्क करा दिया, शादी विवाह हो गया उनका। और दूसरा क्या किया, एक तो पत्नी जो है उनके अनुकूल नहीं और दूसरा जो उसके पुत्र हुआ वो भी जो है उनके अनुकूल नहीं था, वो पूरा नास्तिक अधर्मी बन गया, पापाचारी बन गया। तो ऐसी विषम परिस्थिति जो है महाराज अंग के सामने जब पैदा हो गई जिससे उनका उस घर में रहना दुष्कर हो गया, बहुत बहुत मतलब कष्टमय हो गया। तो अंत में महाराज क्या नाम है अंग परिवार की इस प्रकार की परिस्थितियों को देख करके और विशेष करके अपने पुत्र से तंग हो करके और रात्रि के समय घर छोड़ करके वो जंगल के लिए प्रवेश कर जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। ठीक है, ये तो जो है क्या नाम परिवार वाले दूसरे लोग सोच सकते हैं कि ये तो बुरा हुआ, ऐसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन बुरा हुआ या अच्छा हुआ? बहुत ही अच्छा हुआ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि विदुर जी बोलते हैं, विदुर नीति में एक श्लोक आता है जिसमें बताया जा रहा है, यदि परिवार में एक व्यक्ति खराब है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए, उस व्यक्ति विशेष का त्याग कर देना चाहिए उस परिवार की रक्षा करने के लिए। यदि किसी गांव में एक घर खराब है तो उस घर का परित्याग करना चाहिए जिससे कम से कम गांव सुरक्षित बना रहे, और यदि किसी देश में एक शहर खराब है तो उसका परित्याग करना चाहिए, और संसार में यदि एक कोई देश खराब है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन जहां तक आत्मा का प्रश्न आता है जहां आत्मा का प्रश्न नहीं आता है, यदि आत्मा को यदि शुद्ध आहार नहीं मिल रहा है, यदि आत्मा के कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो इसके लिए हम पूरे संसार का परित्याग कर सकते हैं। आत्मा की रक्षा करना चाहिए। तो इसलिए अंग महाराज ने जब घर छोड़ करके चले जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, महाराज के घर छोड़ने पर उनके स्वजनों को, उनके परिवार वालों की मनोदशा कैसी है, तो इसके आगे का जो आज का जो श्लोक है इसमें वर्णन किया गया है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आगे क्या होता है, घर छोड़ करके चले गए। विज्ञाय निर्विध्य गतम पति प्रजा पुरोहित आमात्य सुहृद गणादय विचक्युरुर्व्या मति शोक कातरा यथा निगूढ़ पुरुषं कुयोगिना। विज्ञाय निर्विध्य गतम पति, पति बोलते हैं राजा को, राजा वास्तव में सबका पति होता है क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे तो पति कौन है सबके, भगवान है। पतिर गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वताम, वास्तव में पति तो भगवान है, लेकिन जो राजा होता है वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि होता है। तो इसलिए यहां भी जो है राजा को क्या कहा जा रहा है, पति कहा जा रहा है। पति का मतलब जो है पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है। जैसे एक पति अपनी पत्नी बच्चों का परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन राजा सारे संसार का भरण पोषण करता है। तो इसलिए विज्ञाय मतलब जान करके निर्विध्य गतम पतिम, राजा घर से उदास होकर के चले गए हैं। ये जाना कि जो राजा थे घर से कैसे चले गए हैं, सुखपूर्वक नहीं गए, दुखी होकर के चले गए हैं। किसने जाना, तो प्रजा पुरोहित अमात्य सुहृद गणादय, गण आदय। तो प्रजा है, सारी प्रजा को जब ये समाचार मिल गया, क्यों सुबह मिल गया होगा समाचार, खराब चीज तो तुरंत फैल जाती है, अच्छी बात बात को फैलने में थोड़ा समय लगता है। तो उठते उठते सभी को समाचार मिल गया होगा, और प्रजा पुरोहित, ये जो पुरोहित थे उनके गुरु वर्ग थे वो सब, और अमात्य मंत्री और सुहृत उनके मित्र गण और मित्र आदि जो उनके थे, और गण आदय जो सामान्य और जो जनता थी, वो क्या किए है, विज्ञाय जब इनको ये समाचार मिला तो विचक्यो रुर्व्यत्ति विचक्यो उर्व्यां अति शोक कातरा, अति शोक कातरा। ये सब कैसे हो गए, अत्यंत शोक में डूब गए। अर्थात कहने का आशय है इनको क्या हुआ, बहुत दुख पहुंचा, अति शोक, शोक भी बोल सकते हैं, अति शब्द लगा रहे हैं, अति का मतलब होता है बहुत शोक हुआ। तो बहुत शोक का मतलब हुआ किसी अच्छे बुरे व्यक्ति के लिए तो बहुत शोक नहीं होता, एक नहीं, ये बहुत शोक तो कब किसके लिए, जैसे कोई बुरा व्यक्ति हो वो चला जाता है यहां से तो उसके लिए हम शोक करते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते, अच्छा हुआ चला गया। इसका मतलब है कि महाराज अंग वास्तव में ही प्रजा के पिता के तुल्य थे, अपनी प्रजा के पति, उनका जो भाव था राजा का वो कैसा था, पिता तुल्य था, इसलिए वो अति शोक कातर रहा। कातर का मतलब हो गया बहुत दुखी हो गए, शोक में डूब गए, जैसे मतलब जैसे कोई विशेष दर्दनाक जब कोई संवाद मिलता है तो हाँ मतलब ऐसे होता ना, एक ऐसे हो गया। तो अति शोक कातरा, वो सारे के सारे क्या हुए, बहुत दुखी हो गए, और विचक्यो उर्व्यां,
तुरंत क्या किए, दौड़ गए कहां, खोजने के लिए, पृथ्वी पर खोजने के लिए। तुरंत जैसे ही उनको यह समाचार मिला कि महाराज घर छोड़ करके चले गए हैं, तो वहां शोक सर पकड़ करके वो बैठ नहीं गए थे। जब मान लीजिए घर में चोरी हो जाए और हमें मालूम चल जाए तो हम क्या करेंगे, क्या क्या चोरी हुई है, वो तो शायद हो सकता है हम बाद में देखें, पहले देखें कौन लेके गया है, किधर लेके गया, किधर गए चोर, होता है कि नहीं होता है, हम चोरों का पीछा करते हैं। तो ऐसे ही जब इन्होंने समाचार मिला तुरंत दौड़ गए, जो उनके मंत्री थे, जो सैनिक थे, खोजने लगे, चारों तरफ खोजने लगे। कैसे खोज रहे हैं, तो इसमें इस शब्द दिया है यथा निगूढ़ पुरुषम, जैसे निगूढ़ पुरुषम, पुरुष बोलते हैं भगवान को, जो भगवान सभी के हृदय में क्या है, परमात्मा रूप में विराजमान है। तो जैसे भगवान जो हृदय में क्या है, छिपे हुए हैं, परमात्मा रूप से अवस्थित हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन वो इस प्रकार ढूंढने लगे जैसे को योगिनः, योगिनः, योगिन का मतलब बोलते हैं जिसने योग में सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, योगी अर्थात वो हमेशा वो क्या करता है, हमेशा वो भगवान के दर्शन करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, सर्वम च मई पश्यति, मई सर्वम पश्यति, वो हर किसी के में वो क्या देखता है, हृदय में भगवान के दर्शन करता है। ये योगी ना, जो परफेक्ट योगी होते हैं, जैसे ही अपनी समाधि में जाते हैं तुरंत भगवान के वो दर्शन करने लगते हैं। लेकिन यहां जो शब्द दिया है को योगिन, को योगिन का मतलब होता है जिन्होंने सिद्धि की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। अभी जिसको जो है क्या नाम है आपका जो है श्रीमद् भागवतम में भी नारद जी के लिए एक प्रश्न वो आया है, नारद जी को भी वहां को योगिन बताया गया है, उसके लिए को योगिन अपि पक्व कृषाणाम दुर्दशम अहम को योगिनाम। भगवान ने कहा, आकाशवाणी अलक्ष्य रूप से कहा, क्या कहा, अभी पक्व, तुम अभी क्या हो, पक्व नहीं हुए हो पूरी तरह से, तुम जो है एक जो सिद्धि, जो एक अवस्था आती है, जो तीन गुणों से परे की अवस्था है, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तत्। जब व्यक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात संसार के तमोगुण रजोगुण और यहां तक कि सतोगुण को भी पार कर जाता है, तो उस अवस्था को जो है धीरे धीरे यम लब्ध्वा, वहां जब पहुंचता है सतोगुण में, जो क्या नाम है, सतोगुण से ऊपर जब अवस्थित हो जाता है, शुद्ध सत्व में जब पहुंच जाता है, तो उस अवस्था में वो क्या करता है, वो हर जगह भगवत स्वरूप का अनुभव करता है, भगवत भगवान को देखता है। लेकिन यदि कोई उस अवस्था पर नहीं पहुंचा है, थोड़ा नीचे ही है, तो उसको बोलते हैं को योगिन, क्योंकि वो कैसा है, अपि पक्व, अभी प्रौण नहीं हुआ है, अप्रौण है। अर्थात अप्रौण का मतलब होता है उसमें अभी क्या है, जैसे जो परिपक्व अवस्था की जो स्थिति होती है, पहली है आप देखते हैं, जैसे इसमें कहा गया है ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ब्रह्म जो है पहली अवस्था है, उससे ऊपर है कि परमात्मा अवस्था है, और उससे ऊपर टॉप जो अवस्था है वो कौन सी है, भगवान की अवस्था है, एक परिपक्व अवस्था है। तो ऐसे ही जो है प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, जो मतलब तीसरी अवस्था को, जो अवस्था में स्थित हो, भगवान की अवस्था में जो स्थित हो, तो यहां अप्रौढ़ कहा गया है। अप्रौढ़ का मतलब होता है अभी वो पहली अवस्था में है, दूसरी परमात्मा लेवल पर भी वो नहीं पहुंचा है, तो इसलिए उस लेवल पर न पहुंचने से, पहली लेवल पर पहुंचने से भगवान के प्रकाश का, भगवान के एक इनडायरेक्ट रूप से तो उसको अनुभूति हो रही है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पा रहा है। इस समय प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पा रहे इसमें, इसको अप्रौण अवस्था बोलते हैं या कुयोगिन बोलते हैं। और दूसरा कृषाणाम, ये अवस्था किसी की तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति संपूर्ण रूप से भौतिक कलमशों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। भौतिक कलमश क्या है, तो भौतिक कलमश बताए गए हैं काम और लोभ। काम का मतलब इंद्रिय तृप्ति की कामना है, भोगों की इच्छा है, और लोभ का मतलब जिन वस्तुओं से हमारी इंद्रिय तृप्ति हो रही है उन वस्तुओं में आसक्ति। अर्थात ये दोनों ही जो है कब तक रहती हैं, कम से कम तमोगुण और रजोगुण को तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक कहने का आशय यहां पर यह है, यहां कोई विशेष हम सिद्धांत को नहीं प्रकट करना चाह रहे हैं। कुयोगिन का मतलब होता है कि वो लोग राजा को उसी प्रकार देख रहे हैं, प्रजा मंत्रीगण उनके सुहृद इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। हालांकि राजा तो कहीं ना कहीं है, इसका मतलब तो निश्चित गया है, तो कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन जहां होना चाहिए उस स्थान पर वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे योगी जो होते हैं, योगी का जो अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा पर अपने मन को एकाग्र कर देना, अपने हृदय में क्या करना, परमात्मा के दर्शन करना। लेकिन जब कोई इस स्थिति पर नहीं पहुंचता है तो उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते। हालांकि वो प्रयास करता है, बार बार समाधि में स्थित होने का प्रयास करता है। जैसे नारद जी ने बहुत प्रयास किया था, जब एक बार दर्शन हुए भगवत कृपा से उनको झलक मिली, इसके बाद में उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंत में भगवान को एक कहने पड़ा, तुम कैसे हो भी, प्रभुपाद जी ने लिखा है उसके कुयोगिन का मतलब अध कचरे, अध कचरे मतलब पूरा कचरा शुद्ध नहीं हुआ है। यहां तक कहा जाता है इस लेवल को प्राप्त करने के लिए जैसे हींग की डब्बी होती है, ठीक है, हींग की डब्बी में से हो सकता है कि हींग खत्म हो गई हो, बिल्कुल हींग नहीं है, फिर भी क्या करना पड़ेगा, हींग की डब्बी में से जो खुशबू है हींग की वो भी खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भगवान का फिर आत्म साक्षात्कार कर पा सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता है। तो कैसे ढूंढ रहे हैं वो लोग, जैसे एक योगी जो अभी पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, बार बार भगवान को अपने हृदय के अंदर समाधि में स्थित होकर के ध्यान धारणा जो समाधि की जो आठ लेवल है प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो कैसा हो जाता है, असफल हो जाता है। तो इस प्रकार जो है वो सारे के सारे क्या नाम है महाराज अंग को पृथ्वी पर चारों तरफ ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर भी वो कैसे रहे, असफल रहे। इसके बाद में क्या हुआ, तो उस लास्ट को, इस श्लोक को भी हम समाप्त करके फिर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में अलक्षयंतः पदवीम प्रजापते, प्रजापते प्रजा के जो पति हैं राजा महाराज, जब महाराज का अलक्षतः लक्षत नहीं हुए, अर्थात उनका कहीं अता पता नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ करके जो थक गए, तो क्या हुए, हृत उद्यमा उनके उद्यम, उनका जो प्रयास कैसा हो गया, हृत हो गया, मतलब खत्म हो गया। प्रयास तो किए लेकिन लक्ष्य को जब प्राप्त नहीं करके, तो प्रत्युपत्यते पुरीम, तो ते वे सारे नागरिक जो ढूंढ रहे थे प्रत्युपत्य पुरीम, पुरी के लिए या अपने नगर के लिए, वो क्या किए, फिर से जो है वापिस आ गए। और वापिस आकर के क्या हुआ, ऋषीन संवेतान अभिबध्य स अश्रुवो, ये समाचार इतनी तेजी से फैल गया था जैसे महाराज परीक्षित को श्राप लगा, आज से सातवें दिन तक्षक के काटने से क्या होगी, मृत्यु होगी। तो आप देखो कथा सातवें दिन से ही प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, आप कल्पना कर सकते हो कितने तेजी से वो समाचार फैला पूरे तीनों लोक में, कि जो है हो सकता है कि शाम से तो कथा चालू हो गई होगी, दोपहर से पहले सवरे आकर के और जितने भी ऋषि मुनि बड़े बड़े सब अपने शिष्यों के साथ में, पर शिष्यों के साथ में पूरी पृथ्वी से, क्या तीनों लोकों से ऋषि मुनि आए थे, स्वर्ग से आए थे, पृथ्वी से आए थे, पाताल से लोक से आ गए थे, और शाम से सुखदेव गोस्वामी ने तो कथा प्रारंभ कर दी थी। कितना फटाफट तेजी से समाचार फैला, तो ऐसे ही इनका भी समाचार बड़ी तेजी से फैल गया था। जैसे ये समाचार फैला, तुरंत पूरी पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, भृगु, वशिष्ठ, नारद, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो सारे के सारे आकर के वहां तुरंत उपस्थित हो गए। भाई इनको क्या पड़ा, ये क्यों आकर के उपस्थित हो गए। वास्तविकता देखी जाए तो इस संसार में हालांकि कोई किसी का हितैषी हो सकता है, लेकिन जितने हितैषी ये भगवान के भक्त होते हैं, ये ऋषि मुनि होते हैं, संसार में और कोई दूसरा इतना हितैषी नहीं होता है। ये ध्यान से सुन लेना चाहिए। जैसे बताया है नारद जी ने, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्र समासते स्वरा। जितने भी दैवी गुण हैं, आध्यात्मिक गुण हैं, या देवता तुल्य जो गुण हैं, केवल भगवत भक्तों के अंदर ही बात करते हैं। तो वो जितने प्रजा के प्रति चिंतित रहते हैं, हो सकता है कि राजा रहे न रहे, हालांकि वो पति है, प्रजापति कहते हैं उसको, लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित कौन रहते हैं, ऋषि मुनि सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। वो केवल एक ही राज्य की चिंता नहीं करते, वो तीनों लोकों में जितने भी राज्य हैं सभी की वो चिंता करते रहते हैं। जिस समय जगत की सृष्टि की थी भगवान ने, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वदम एस वो अस्तु इष्ट काम दुख। तो सबसे पहले सृष्टि करने से पहले, जब इसकी सृष्टि की गई थी, उसके पहले इसका कल्याण कैसे होगा। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच, पुर उवाच, जब सृष्टि का शुभारंभ जैसे हुआ था, प्रजा की जब सृष्टि हुई थी, उसके साथ साथ में किसकी सृष्टि की गई थी, इनके परम कल्याण कैसे होगा, इस बात की जो है इस पे चर्चा की गई थी, और इसके लिए यज्ञ की जो है सृष्टि कर दी गई थी। प्रजा के साथ साथ में किसकी सृष्टि हुई थी, यज्ञ की सृष्टि हुई थी। सह यज्ञ है, सह यज्ञ, यज्ञ सह प्रजा सृष्टा, सृष्टि के समय प्रजा की सृष्टि के में सह, इसके साथ साथ में यज्ञ भी जो है सृष्टि की गई थी। तो भगवान जैसे मानव समाज के प्रति, पूरे संसार के प्रति चिंतित रहते हैं, ऐसे ही तो ये जो है संवाद उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को कहा था, और ब्रह्मा जी ने मनु को कहा था कि तुम सृष्टि, मनुष्य की जब सृष्टि करो, ये नियम जरूर लागू करो, उनका कल्याण कैसे होगा, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए और तो कोई आए थे, जितने भी जो आए थे, लेकिन ऋषि मुनि, यहां जो शब्द दिया गया है, ऋषि न समवेतान, समवेत पूरी पृथ्वी के जो है ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए थे। क्योंकि ऋषि मुनि वास्तव में जितने भी पहले जो राजा लोग होते थे, सबको सलाह देने वाले कौन होते थे, ऋषि ही सलाह देने वाले होते थे। आजकल के जो है मंत्री जो वास्तव में जो सलाह क्या देते हैं, वो सलाह देंगे बर्बाद कैसे होगा, इस बात की वो सलाह पूरी रात चिंतन करते हैं, कैसे राजा को बर्बाद किया जाए और राजा से पहले प्रजा को बर्बाद किया जाए, इस बात की वो मतलब सलाह देते रहते हैं। लेकिन उस समय के जो ऋषि मुनि थे, वो हमेशा चिंतित रहते थे प्रजा के कल्याण के लिए। इनकी भौतिक काम, भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक जरूरत है, वो तो पूर्ति होना ही होना है, लेकिन इसके साथ साथ में इनका परम कल्याण कैसे होगा, इनको भगवत प्राप्ति कैसे होगी, इसके ऊपर वो पूरा चिंतन मनन करते रहते थे, चिंतित रहते थे। तो जब उनको समाचार मिला कि राजा छोड़ करके चले गए हैं, तुरंत तो उनको बेचैनी बढ़ गई कि यदि राजा नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से प्रजा में फिर उपद्रव फैल जाएगा। प्रजा क्या होगी, फिर से जो है उपद्रवी बन जाएगी, लूट खसूट, चोर डाकू उचंगे लुटेरे भर पड़ेंगे इस समय। इसलिए तुरंत जैसे ही समाचार, तुरंत आकर के वहां उपस्थित हो जाते हैं, और आगे फिर वो लोग प्लान करते हैं कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तुरंत इमीडिएटली जो है राजा नियुक्त करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि राजा रहेगा तो चोर उचंके नहीं रहेंगे, लेकिन यदि राजा नहीं है तब तो फिर कहना ही क्या। जब राजा के, आजकल तो राजा के होते हुए इतने चोर उचक्के हैं, तो जब राजा नहीं हो तब तो फिर कह ही क्या सकते हैं। तो इसलिए अभिबध्य स अश्रुवे, स अश्रुवे आंसू बहाते हुए, मतलब ये उनके हृदय से प्रकट हो रहा है, आंसुओं से प्रकट हो रहा है कि वास्तव में अंदर से बहुत दुखी हैं वो लोग। और अश्रुवे प्रजा ने आकर के आंसू, दुख 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 से आंसू बहाते हुए और अभिबध्य उनको क्या किए, पहले नमस्कार किए, उनको प्रणाम किए। और निवेदय पौरव भर्तु विप्लव, भर्तु मतलब राजा की अनुपस्थिति का उन्होंने निवेदयत क्या किया, निवेदन किया कि हमें कहीं भी जो है वो नहीं मिले हैं। तो इसलिए इसमें जो है जो बताया जा रहा है कि जो है क्या नाम है, महाराज अंग वास्तव में सिद्धांत यही है, जैसे जो है क्या नाम प्रहलाद महाराज ने बताया, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यही है कि ये जो संसार है, जिन्होंने भी संसार में आसक्ति की है, जिन्होंने भी अपने संसार में मन लगाया है, सदा सम उद्गिन धियाम असत ग्राह, सदा का मतलब होता है हमेशा, 24 घंटे कैसे रहेंगे, उद्गिन रहेंगे। उद्गिन धिया, धिया बोलते हैं उनकी मति, उनकी बुद्धि, उनका सब कैसे रहेंगे, हर समय टेंशन में रहेंगे। ये बिल्कुल सिद्धांत है, ये बिल्कुल नियम है। धियाम है, धियाम असत ग्रहात, सदा सम उद्गिन। असत ग्रहात, असत का मतलब होता है पिता पुत्र या घर परिवार स्वजन सगे संबंधी राज जो कुछ भी है, ए धन यौवन पुत्र परिजन, ये सारे के सारे क्या हैं, असत शब्द में आ जाते हैं। एक जो है ऐसा ही प्रसंग जो है उसमें आता है, आप सभी जानते हैं क्या नाम है, दुंदकारी के प्रसंग में, जब आत्मदेव दुंदकारी से भी दुख, दुंदकारी का दूसरा भाई था जो उनका पुत्र उत्पन्न हुआ था, अंग महाराज का बहन दुंदकारी के जैसा था, तो दुंदकारी के जो है करतूतों से क्या हुए आत्मदेव, वो भी बड़े दुखी थे। तो उन्होंने जब देखा, उनके दूसरे पुत्र गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी बहुत दुखी हैं, तो एक दिन जो है मौका पाकर के पिताजी के पास में आए और फिर उनको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो दो हम जो है थोड़ा सा इस पे चर्चा करके समाप्त करेंगे। तो वो समझा रहे हैं कि हे मेरे पिताजी सुनो, असार खल संसार दुख रूपी विमोहक, असार खल संसारो, संसार असार, ये संसार कैसा है वास्तव में, ये असार है, हालांकि हमें सार जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे धानी को धान निकाल दो लेकिन दूर से देखने में कैसा लगेगा, बिल्कुल धान लगेगा, लेकिन वास्तव में क्या है, उसमें कितना भी उसको कूटते रहो लेकिन आपको धान नहीं मिलेगा। तो इसके विशेषण दे रहे हैं असार है। ये संसार कैसा है, इस संसार पूरा निस्तेज असार से भरा हो, इसमें कुछ भी सार की वस्तु नहीं है। ये लगते हैं कि ये मेरा वो मेरा है, मेरा है तेरा, लेकिन अंत समय मरगट में डेरा, कोई जो है काम आने वाला नहीं। इसीलिए असार खल संसारो दुख रूपी, ये कौन बोल रहा है, गोकर्ण जी बोल रहे हैं। एक तो असार है, खल संसारो, खल मतलब जिसको बोल सकते हैं एक खल, एक खल मतलब दुष्टता से भरा हुआ है, मतलब कुछ भी इसमें अच्छी बात नहीं है, अच्छी मतलब वो नहीं है, गुण नहीं है। और दुख रूपी तीसरा विशेषण क्या दे रहे हैं, ये दुख रूपी है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, जिसमें भी आपने मन लगाया 100% गारंटी वो दुख देगा ही देगा। असार खल संसारो दुख रूपी विमोहक, और ये जो संसार क्या करता है, चौथा विशेषण दे रहे हैं, विमोहक पूर्ण रूप से व्यक्ति को क्या कर देता है, भ्रमित कर देता है। सुता कश्य धनम कश्य स्नेह वाल ज्वलते अनिसम। पिताजी सुतः कश्य है, कौन किसका पुत्र है संसार में, सोचो तो सही, जिसके लिए तुम इतना दुख सो रहे हो। सुतः कश्य है किसका पुत्र, कश्य धनम किसका धन, स्नेहवान जिन्होंने भी इसने स्नेह किया है, इनसे प्रेम किया है, ज्वलते अनिसम। अनिसम का मतलब होता है निरंतर ज्वलते, जैसे दीपक जलता है ऐसे व्यक्ति वो जलता रहता है। स्नेहवान ज्वलते अनिसम, जिन्होंने भी थोड़ा प्रेम किया वो 24 घंटे जलता रहेगा। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए क्या करना है, दो तो संक्षिप्त में कर देते हैं। इसलिए क्या करना है, उनके पिताजी ने पूछा, अरे भाई तुम बोलते हो लेकिन इतने चक्रवर्ती राजा हैं, बड़े बड़े राजा महाराज हैं, इंद्र जैसे देवता हैं, उनके लिए तो सुख ही सुख है। बोला नहीं, ये भ्रम है आपके लिए। न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। आप ये मन समझो, ये देवता लोग इतने महान पदवी पे हैं, न च इंद्र से सुखम, इंद्र के लिए भी कोई सुख नहीं है। न च सुखम चक्रवर्ती ना, जो चक्रवर्ती राजा है तीनों लोकों में, जिनका एक छत्र सम्राट है, जिसके बारे में बोलते थे ना, क्या नाम है, नहीं जिसने पूरा, जो क्या नाम है, अभी हुआ था ना एक अंग्रेज जो यहां तक आया था पूरा बार, सिकंदर है। सिकंदर जो है देखो, अंत समय में वो रोता था चिल्लाता था, भाई कोई मेरे को बचा लो, कोई मेरे को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को बचा लो कोई भी, इतना भयभीत था, इतना डर गया था, चिल्लाता रहता भाई कोई बचाओ मेरे को, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेगा ये मरना नहीं चाहता। तो सुख किसके लिए, तो सुख किसके लिए, तो उसके बारे में बता रहे हैं। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर, विरक्तस्य मुनेर और एकांत जीवन है, ये दो विशेषण दे रहे हैं। जो कैसे हैं, विरक्तस्य बिल्कुल रक्त नहीं है इस संसार में, किसी भी वस्तु में जो आसक्त नहीं है, न धनम न जनम न सुंदरी, बिल्कुल विरक्तस्य। भगवान ने गीता में कहा है क्या ना, त्याग शांति, यदि शांति चाहते हैं तो पहले इनका त्याग करो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा उससे, क्या नाम उसे, सनातन गोस्वामी ने, जो ब्राह्मण आया था काशी से चल करके, या सबसे उत्तम वस्तु चाहते हो तो पहले इसको क्या करो, पारसमणि को जमुना जी में फेंक दो। तो इसलिए विरक्तस्य और एकांत जीवन, एक अंत जिसमें, एक में अंत हो रहा है, जिसकी मति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, तो बोलते हैं सुखम अस्ति, ये व्यक्ति वास्तव में ही सुखी है। इसलिए मुच्च अज्ञान प्रजा रूपम मोहतो नरके गति, इसलिए हे मेरे पिताजी मुच्च अज्ञान, इस अज्ञान को छोड़ दो कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, ये मेरे सुहृद हैं, हा या इनका क्या होगा। मुच्च अज्ञान, ये अज्ञान क्या करना है, मोहतो, ये मोह पैदा करने वाला है, और इससे क्या हो गए, नरके गति, ये नरक में ले जाने वाला है। निपतश्यति देहो अयम, देहो अयम निपतश्यति, नि का मतलब होता है निश्चित, ये शरीर क्या होगा, छूटेगा ही छूटेगा, और इनमें से कोई बचाने वाला नहीं। और वैसे तो देखा जाता है कि जो बड़े बूढ़े मरते हैं ना, तो कभी कभी बहुत बच्चे जो है प्रसन्न होते, अच्छा हुआ, नहीं तो दबा के बैठा था इतने दिनों से, अच्छा भी देता ही नहीं था। अच्छा है कम से कम, अब तो मालिक बनने का समय आ रहा है हमारा। तो बोलते हैं निपतश्यति देव अयम सरम त्यक्त्वा वनम व्रजः, इसलिए क्या करो, ये सब छोड़ो और वन के लिए प्रस्थान करो। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने कहा है, तथा साधु मन्य असुर वर देहिनाम सदा सम उदगिन धियाम असत ग्रह, जिन्होंने भी संसार की वस्तुओं में मन लगाया है, हित्वा आत्मपातकम, ये सारी की सारी वस्तु क्या करने वाली है, आत्मा का पतन कराने वाली है, नरक को ले जाने वाली है, इसलिए क्या करो, हित्वा आत्मपातकम ग्रह अंधकूपम, ये सारा संसार घर गृहस्थी क्या है, संसार ही अंधकुए के समान है, बनम गतो, इसलिए क्या करो, बन के लिए प्रस्थान करो, और वहां जाकर के क्या करो, हरिम आश्रयेत, वहां जो है टीवी मत देखो, पेपर मत पढ़ो, इधर उधर की चर्चा मत करो, हरिम आश्रित, हरि की शरण लो, वही कल्याण करेंगे और कोई कल्याण कर नहीं सकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम नंदे बांटो बांटो अब बांटो अरे।